मार्च महीने की 28 तारीख दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट डील के किसी विकल्प को संसद में नहीं मिला बहुमत।
कल थेरेसा मे ने ये अनाउंस किया कि अगर उन्होंने ब्रेक्जिट डील को सपोर्ट किया तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से स्टेप डाउन करेंगे।
भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सामने पाकिस्तान के पास क्या है विकल्प।
पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक कारण मिलेगा कि वो भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आप बनाएं कि जो स्पेस में मिलिट्री है उसको हम काउंटर कर सकें।
प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत।
सब्जी मोदी मोदी कर रहे थे, यहाँ से पता नहीं कौन के किसे देगा, किसी को कुछ नहीं पता।
खबर IPL की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार भूमिका राय से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों से वादा किया है कि अगर वे यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट के अलग होने की डील का समर्थन करते हैं तो वे अपने पद से हट जाएंगी। टेरिजा मे के यूरोपीय संघ से अलग होने के समझौते के मसौदे को सांसद पहले ही दो बार खारिज कर चुके हैं। उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि हमें इस डील को करना है और ब्रेक्जिट को मुमकिन बनाना है। हालांकि इस बार भी इसके पारित होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि अहम उत्तरी आयरिश पार्टी DUP ने साफ कह दिया है कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के सांसद जॉर्ज फ्रीमैन ने इस मसले पर टेरिजा मे के समर्थन में कहा है,
It was a very sad moment. She's devoted her life to public service and she with tears.
ये बहुत दुखी करने वाला पल है। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। मैं आज वादा करता हूँ कि मैं ब्रेक्जिट के अलग होने का समर्थन करूंगा। मैंने खुद से बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैं हूँ तो एक इंसान ही, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। मैं आप सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप आगे आएं। ये थे सांसद जॉर्ज फ्रीमैन के शब्द। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो वेनेजुएला से अपने सैनिकों को वापस बुला लें। शनिवार को रूस के दो वायुसेना विमान करीब 100 रूसी सैनिकों को लेकर राजधानी काराकस उतरे थे। अमरीकी सरकार का मानना है कि इन सैनिकों में स्पेशल फोर्स के सैनिक भी हैं और साइबर सिक्योरिटी के जवान भी। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस को वहां से जाना होगा, हम देख लेंगे, हमारे सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं और ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने अपने नए 737 मैक्स विमानों में से 2 के एंटी स्टॉल सिस्टम में बदलाव शुरू कर दिया है। इसके साथ ही विमान के सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे सिस्टम को ओवरराइड करने में पायलट को आसानी होगी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बुरुंडी में राष्ट्रपति पियरे नकुरुन्ज़ी की तस्वीर से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई 3 लड़कियों को रिहा कर दिया गया है। इन लड़कियों की रिहाई के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया गया था। दरअसल इन लड़कियों की राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ छेड़खानी करने का आरोप था। इन्होंने उनकी तस्वीर पर नकली बाल और मूछें बना दी थीं, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मोजाम्बिक में हैजा के 5 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। इदई तूफान की वजह से दक्षिण अफ्रीका में स्थिति बहुत खराब है। अकेले मोजाम्बिक में इस तूफान की वजह से 500 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि भी हो गई है और अब इसके फैलने का खतरा मंडरा रहा है। अल्जीरिया की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी FLN ने भी बीमार चल रहे राष्ट्रपति अब्देल अजीज के पद से हट जाने की मांग का समर्थन किया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी का ये फैसला आर्मी प्रमुख के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला दिया था। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति यदि शासन करने में सक्षम नहीं है तो संवैधानिक परिषद ये घोषित कर सकती है कि राष्ट्रपति का पद खाली है। संविधान के मुताबिक यदि ऐसा हुआ तो सीनेट के प्रमुख को तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। हालांकि लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें। एक महिला ने इस संबंध में कहा, हमारे राष्ट्रपति साल 2014 से गंभीर तौर पर बीमार हैं और फिर आज अनुच्छेद 102 लगाने का क्या मतलब है। इन सभी को पूरी तरह से बिना किसी विवाद के हट जाना चाहिए, हमें उनकी जरूरत नहीं है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के संबंध में यानी ब्रेग्जिट डील के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में कल काफी चर्चा हुई है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि ब्रेग्जिट डील को यदि संसद से मंजूरी मिल जाती है तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़ देंगी। आलोचक ये नहीं चाहते कि ब्रेग्जिट डील के लिए अगले दौर की बातचीत में प्रधानमंत्री टेरिजा मे की कोई भूमिका हो। अगले दौर की बातचीत में कारोबारी रिश्तों का भविष्य तय होना है, लेकिन ये तभी होगा जब ब्रेग्जिट डील संसद में पास हो जाए। मैंने अब से कुछ देर पहले लंदन में मौजूद BBC संवाददाता गगन सबरवाल से बात की और पहला सवाल यही किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रेग्जिट के मुद्दे पर क्या कुछ हुआ।
कल ब्रिटेन के MPs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इकट्ठा हुए थे सीरीज ऑफ वोट्स के लिए। इन वोट्स को इंडिकेटिव वोट्स बोलते हैं। इस वोटिंग के द्वारा वो ये फैसला लेने वाले थे कि वो कौन से डील ब्रेग्जिट डील को सपोर्ट और बैक करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 8 वोट्स उन्होंने चूज किए वोटिंग के लिए, जैसे कि नो डील के ऊपर, सेकंड रेफरेंडम के ऊपर, टेरेसा मे के थर्ड डील के ऊपर, और ऑल द 8 वोट्स में MPs किसी भी मेजोरिटी डिसीजन पे नहीं पहुंच सके। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वो इंडिकेटिव वोट्स जो ब्रिटिश MPs ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से छीन लिए थे मंडे के वोटिंग प्रोसेस के द्वारा, वो पूरा वेस्ट हुआ क्योंकि हमने एक भी वोट में मेजोरिटी नहीं देखा। कंट्री के लिए, MPs के लिए भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कल का दिन रहा। लेकिन इसके अलावा एक शॉकिंग बात ये निकली कि कल टेरेसा मे ने ये अनाउंस किया अपनी टोरी पार्टी को कि अगर उन्होंने उनके विड्रॉवल ब्रेग्जिट डील को सपोर्ट किया तो इन रिटर्न वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से स्टेप डाउन करेंगे। ये उन्होंने पहली बार बोला है।
गगन, ये बताइए कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कुछ हलचल रही, जिस तरह से वोटिंग हुई और किसी को किसी मामले में मेजोरिटी नहीं मिली, अब ब्रेग्जिट के मामले में आगे क्या तस्वीर बन रही है?
अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ऑल द 8 इंडिकेटिव वोट्स को मेजोरिटी नहीं मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर मे फ्राइडे या मंडे को अपना विड्रॉवल डील फिर से पुश करने की कोशिश करेगी। प्राइम मिनिस्टर की टीम ने बोला है कि लास्ट वीक जब वो EU के साथ, जब वो ब्रसल्स में थी, तब उनका बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रहा EU के साथ, और उनके विड्रॉवल एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस है और इसी की वजह से वो ये अपना विड्रॉवल एग्रीमेंट फिर से MPs के सामने लाना चाहेगी। तो ये शायद फ्राइडे या मंडे को हो सकता है। नाउ अगर MPs ने इस बार उनके विड्रॉवल डील को सपोर्ट किया और एक्सेप्ट किया, इसका ये मतलब होगा कि 22 मई को UK EU से निकल जाएगा। अगर MPs ने ये रिजेक्ट किया तो 12 अप्रैल को UK EU से निकलेगा विदाउट एनी डील।
गगन, 12 अप्रैल और 22 मई की तारीखें अभी दूर है। गगन, ये बताइए कि टेरिजा मे ने जैसा कि संकेत दिया है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पूर्व निर्धारित समय से पहले भी छोड़ने के लिए तैयार हैं ब्रेग्जिट डील की खातिर, यदि ऐसा हुआ तो टेरिजा मे की जगह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है?
अभी टेरेसा मे ने हमें कोई टेंटेटिव डेट नहीं दिया कि वो कब प्राइम मिनिस्टर पोजीशन से हटेगी। उन्होंने इतना ही बोला है कि वो ब्रेग्जिट के दूसरे निगोशिएशन स्टेज में तब तक वो स्टेप डाउन करेगी और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा या बनेगी वो उनको पूरा सपोर्ट देगी। अभी ये कहा जा रहा है बोरिस जॉनसन शायद यूके का अगला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उनके अलावा ब्रिटेन के एनवायरनमेंट सेक्रेटरी माइकल गव का भी नाम अभी सामने आया है। लोगों ने ये भी बोला कि शायद वो भी बन सकते हैं। इनके अलावा साजिद जावेद जो साउथ एशियन MP है, जो अभी होम सेक्रेटरी है, उनका भी नाम सामने आ रहा है।
ये थी लंदन से BBC संवाददाता गगन सबरवाल।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसने ये क्षमता हासिल की है। बीबीसी से बातचीत में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के पूर्व महानिदेशक और मिसाइल रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश चंदर ने इस बारे में और जानकारी दी।
कई वर्षों से DRDO लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर काम कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर काम कर रहा है और आज ये दोनों प्रोग्राम काफी मैच्योर स्टेट में है। तो हमने क्या किया, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का बूस्टर होता है पहली स्टेज जो काफी दूर तक ले जाती है प्रक्षेपण स्टेज, वो और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का जिसे हम किल व्हीकल कहते हैं जो अंत में जाकर मिसाइल या सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करता है, उन दोनों को इकट्ठा करना और फिर उसमें एक नई क्षमता देना कि वो इतनी तीव्र गति से आ रहे सैटेलाइट को इंटरसेप्ट कर सकें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए समर्पित की है। बहुत ही बड़ा कदम है भारत की सुरक्षा में। हमारा लक्ष्य ये था कि हम दिखा सकें कि हम इस तीव्र गति से आते हुए सैटेलाइट को उसके किसी भी कक्ष में इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उस दिशा में ये बहुत जरूरी था कि हम एक ऐसा सैटेलाइट चुने जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। दूसरा ये था कि जब हम सैटेलाइट से टकराते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े स्पेस में बहुत देर तक रहते हैं क्योंकि स्पेस में उसकी गति कम करने का कोई ड्रैग नहीं है, इसलिए ये जरूरी था कि हम एक लो ऑर्बिट में करें। 90% के लगभग जो सैटेलाइट्स हैं वो 300 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की ऑर्बिट्स में रहते हैं और लगभग सभी मिलिट्री सैटेलाइट्स जो इमेजेस गैदर करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन वो सब इसी रेंज में है। तो ये कैपेबिलिटी था कि हम उनमें से इस जोन में किसी भी सैटेलाइट को मारने की क्षमता रखते हैं।
ये थे DRDO के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अविनाश चंदर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका दावा है कि भारत अब किसी भी तरह के जासूसी उपग्रहों को गिरा सकता है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन इस उपलब्धि को बहुत पहले ही हासिल कर चुका है। चीन के बाद जिक्र होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की किस तरह की योजना है, उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम इस मामले में कहाँ तक पहुँचा है और वो अपनी रक्षा ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है, जानने के लिए मैंने इस्लामाबाद में वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से बात की।
देखें, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम इंडिया से 2-3 वर्ष पुराना ही है। ये 1961 में शुरू हुआ था और एक तंजीम इदारा स्पार्को के नाम से बनाया गया, लेकिन कोई ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी गई। जो ज्यादातर काम हुआ उसमें जो सिविलियन यूज की सैटेलाइट्स हैं वही 1-2 मदार में पहुंचाने के लिए किया गया, लेकिन फिर 2011 में जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने एक 2040 तक का प्लान अप्रूव किया था जिसमें कोई 5 के करीब सैटेलाइट्स थी और जियो सैटेलाइट्स थी और कुछ 6 जो हैं वो नियर ऑर्बिट यानी लो ऑर्बिट में मदार में घूमने वाली सैटेलाइट्स हैं, लेकिन वो सब की सब सिविलियंस ही बताई गई हैं और उसमें कुछ जो हैं वो चाइना की मदद से स्पेस में पहुंचाई गई हैं और कुछ जो रशिया की मदद से, लेकिन वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर और वेदर प्रेडिक्शन और इस तरह की चीज़ों के लिए स्टेट तो यही बताती है कि उसके लिए उसका इस्तेमाल है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इन वेबसाइट्स का मिलिट्री मीन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि उससे मालूमात जानकारी हासिल की जा सकती है ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट्स के बारे में और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से कभी उसको सैनिक उसके लिए इस्तेमाल के लिए कभी भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान वहां पर हथियार लेकर जाएगा या वहां पर सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए कोई मिसाइल पाकिस्तान ने तैयार किया है। लेकिन अब जो भारत ने कल ये टेस्ट किया है तो उससे लगता है कि पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ताल्लुकात और जो रीजन में, और अभी अभी हम एक जंग के दहाने से तकरीबन वापस लौटे हैं, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक कारण मिलेगा कि वो भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आप बनाएं कि जो स्पेस में मिलिट्री है उसको हम काउंटर कर सकें। लेकिन जो अगर आप फॉरेन ऑफिस का बयान देखें तो उसमें वाजे तौर पर पाकिस्तान लगता है कि वो कह रहा है कि वो मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस का हामी नहीं है और वो चाहेगा कि इस पर कोई इंटरनेशनल कानून बने के ताकि जो देश इसकी तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके।
हारून साहब, ये तो कहने वाली बात हुई, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर जो ज़रूरतें हैं और जो डिफेंस से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं उन्हें किस तरह पूरा करता है पाकिस्तान, ये बताइए।
देखें, चाइना काफ़ी हेल्पफुल है उसमें, पाकिस्तान को ज़रूर सपोर्ट कर रहा है मिलिट्रीली भी और सिविलियन साइड पर भी। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आई थिंक चाइना पाकिस्तान है जो उस तरफ देखेगा कि वो उसको हेल्प आउट करे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक उन्होंने मिलिट्रीली उस पर नहीं सोचा है, और जो इकॉनमी का हाल है इस वक्त और जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, उसमें शायद ये बड़ा एक्सपेंसिव वारफेयर है, इस पर काफ़ी पैसा लगता है। पाकिस्तान शायद वही उसको उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था और ना उसके पास पैसे थे। लेकिन अब मुझे खदशा यही है कि चूंकि अब इंडिया ने किया है, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट में हुआ था कि इंडिया ने किया तो फिर पाकिस्तान को भी करना पड़ा, तो अब पाकिस्तान भी इस तरफ जरूर सोचेगा और शायद कुछ अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डिवेलप करके या चाइना की मदद से उसको करके अब वो भी चाहेगा कि ये बात जो इंडिया ने स्पेस तक लेके गया है पाकिस्तान भी अब उसको काउंटर करने का कम से कम कोई ऐसा वो हो के अगर कोई सैटेलाइट टारगेट होती है या कुछ होता है तो वो उसको काउंटर कर सके।
ये थे पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद। और आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका राय।
शुक्रिया संदीप। सबसे बड़ी खबर आज के अखबारों की यही है, मिशन शक्ति, जो कल प्रधानमंत्री ने बाकायदा उसके लिए ट्वीट किया था और 12 बजे कुछ देर से वो आए, और जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसे एक बड़ी भारत की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके बाद अगर चुनावी खबरों की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकता है लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दें। हालांकि जिस वक्त रायबरेली और अमेठी की सीटों की घोषणा हुई थी और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और उसमें प्रियंका गांधी का नाम नहीं था, तो ये जो कयास थी कि वो चुनाव लड़ सकती हैं वो लगभग उस पर विराम लग गया था। लेकिन कल अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी उनसे कहती है कि वो चुनाव में खड़ी हों तो वो ज़रूर खड़ी होंगी। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी के चुनाव अगर वो खड़ी होती हैं तो क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा?
ये तो देखने वाली बात होगी,
क्योंकि वो खुद बोलती रही हैं कि उनका भी पूरा जितना भी फोकस है वो पार्टी को मजबूत बनाने में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने को लेके। इनफैक्ट कल हमारे यहाँ जो सचिन पायलट ने भी, हमने जो बात की सचिन पायलट से, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि प्रियंका गांधी अभी पूरी तरह फोकस्ड है उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर के। तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन उन्होंने एक इंडिकेशन ये ज़रूर दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो नाम है वो राहुल गांधी ही होगा, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, राहुल गांधी फिक्स नाम है। अब इसके बाद गोवा में बीजेपी के नेतृत्व वाली जो गठबंधन सरकार है उसकी जो सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के कुल 3 विधायक थे, उनमें से 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलिकर को पद से हटा दिया गया है। ये दोनों ही खबरें हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं। और इसके अलावा गिरिराज सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर है। गिरिराज सिंह बेगूसराय चुनाव से लड़ने की खबरें आई थी, लेकिन बहुत नाराज़गी थी उनसे कि उनको बिना उनसे चर्चा किए, बिना उनको बताए हुए उनको बेगूसराय सीट दे दी गई है। लेकिन कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद अब ये तय हो गया है कि वो बेगूसराय सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चुनाव से ही जुड़ी एक और खबर है। नव निर्माण सेना ने शंभूलाल रिगर को टिकट देने की बात कही है और इस खबर को नव भारत टाइम्स ने अपने पन्ने पे लिया है। संदीप, आपको याद होगा शंभूनाथ रिगर वही हैं जिन्होंने दिसंबर 2017 में इन पर एक मजदूर की हत्या और उसको जलाने का जो मामला दर्ज हुआ था, और उन्होंने दिया था इसके पीछे वजह, जब उनसे पूछी गई थी जब, तो उन्होंने बोला था लव जिहाद जैसा एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से एक हत्या का वीडियो आया था सामने। इसके अलावा जैसे हम ये बात कर रहे हैं, उसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया ने देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल की खबर है जिसमें एक 12 साल के बच्चे को उसके सीनियर्स ने मार डाला है और स्कूल प्रशासन ने उसे स्कूल परिसर में ही दफना दिया, ना पेरेंट्स को बताया ना कहीं बताया। तो ये दो बड़ी खबरें हैं आज की।
बहुत शुक्रिया भूमिका राय, दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए। श्रोताओं, कल हमने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन की चुनावी तैयारी पर जुबैर अहमद की एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवाई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से भाजपा की चुनावी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी 10 उम्मीदवार पिछले आम चुनाव में विजयी रहे थे, जिसका श्रेय मोदी लहर को दिया गया था। लेकिन क्या इस बार भी मोदी लहर है इस इलाके में? इसी सवाल की पड़ताल करते बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने मेरठ से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है।
बागपत चुनावी क्षेत्र के बड़ौत कस्बे के बाजार में कुछ दुकानदार आपस में बैठे बातें कर रहे थे। मैं वहां गया और मैंने उनसे पूछा, भाजपा के उम्मीदवार और केंद्र में मंत्री सत्यपाल सिंह पिछली बार भारी मतों से जीते थे, इस बार उनका समर्थन कितना रहेगा? व्यापारी अंकुर और प्रशांत जैन ने हमें बताया।
हमने तो मोदी दिखाई दे रहा और कुछ नहीं है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हमें तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। कोई भी एक्स वाई जेड, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मोदी दिखाई दे रहा, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है।
लेकिन मोदी जी के बारे में बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं और दूसरे भी जो उनके जो विचार से अग्री नहीं करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भाषण ज़्यादा देते हैं, डिलीवर कम करते हैं।
भाई पूरे विश्व को उन्होंने अपने एक मंच पर ला दिया, मुस्लिम देश भी जो है पाकिस्तान के विरोध हो गई है, तो कुछ तो अगले बंदे में क्वालिटी है। तो ये पहली बार हुआ है कि मुस्लिम कंट्री भी इंडिया के साथ खड़ी है।
अगर मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के नाम पर भी वोट मिलेंगे, जैसा कि बड़ौत की दलित महिला प्रमिला हमें बताती।
सब जी मोदी मोदी कर रहे थे, यहाँ से पता नहीं कौन के किसे देगा, किसी के कोई किसी को कुछ नहीं पता अभी तक, कौन किसे का वोट देगा। ठीक है,
आपने सोच विचार किया?
मेरा तो सोच विचार जी, मेरी तो बहन जी है जी, मैं तो सब बताऊंगी, मेरे तो बहन जी, हमेशा बहन जी की वोट देंगे, बहन जी की देंगे।
प्रमिला के भाई संतोष कुमार मोदी के समर्थक हैं, एक ही परिवार में अलग अलग राय।
नहीं जी, चांस तो अभी है नहीं जी, जैसे इनका गठबंधन हो रहा है अभी, लोग बीजेपी पे जाएंगे जाते, गठबंधन को इनसे फायदा हो जाएगा बीजेपी को जी।
कैसे
ऐसे फायदा हो जाएगा इनसे, इनकी तो वोट कटेगी वहाँ से, लेकिन कुछ वोट जाट की भी बीजेपी देंगे, जो नए बंदे जैसे हम सवाल है, हम नौजवान लोग हैं तो देंगे बीजेपी को।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सभी जाट, दलित और मुस्लिम एकजुट होकर गठबंधन को वोट दें तो शायद बीजेपी सभी सीटों पर हार जाए। लेकिन हमने बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और कैराना सभी जगहों पर बटे हुए मतदाता पाए। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। टिकट के बंटवारे को लेकर मेरठ में पार्टी के अंदर नाराजगी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विनीत अग्रवाल टिकट न मिलने पर नाराज थे। उन्हें मनाने के लिए दिल्ली से पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह खुद आए थे। उसके बाद हम विनीत अग्रवाल से मिलने उनके घर पहुंचे और हमने पूछा कि आपकी नाराजगी दूर हुई?
मैं जो उसको जिनको टिकट मिला वो भी मेरी वेस्ट जाति के थे, मैं भी वेस्ट जाति का हूँ, जात उसमें आड़े नहीं आई है, वो भी बनिया है तो मैं ही बनिया हूँ। पार्टी ने इस बार टिकट ज़्यादा नहीं बदले, मेरी नाराजगी थी, लोग कहते हैं नाराजगी मेरी थी, बरकरार दूर हो गई। नाराजगी एक सीमा तक तो होती है, टिकट मिलने तक होती है। टिकट मिलने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो हमारा चुनाव चिन्ह कमल। कमल ही हमारे लिए नक्शा था, कमल जीतेगा तो वो हमारा प्रत्याशी जीतेगा।
गठबंधन से मिल रही चुनौती पर विनीत अग्रवाल बोले, जनता उसे ठुकरा देगी। गठबंधन के बारे में उनके विचार ये हैं।
बहन मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों को अपनी जमीन खिसकती महसूस हो गई कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, इनका उत्तर प्रदेश में और देश में कुछ नहीं।
मैंने श्री अग्रवाल से पूछा, आपकी पार्टी का चुनाव में राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं है?
राम राज्य का मतलब राम मंदिर नहीं होता, राम राज्य का होता मतलब होता महा महा बहने गुजरात की तर्ज पे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में भी रात को 2 बजे सड़कों पर गहनों चलेगी सुरक्षित चल सके, मेरा व्यापारी व्यापार कर सके, उद्यमी उद्योग कर सके, उद्योग डाल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, किसान को खेती के लिए पानी मिल सके, बिजली मिल सके और सूक्ष्म बीज मिल सके, उसको कहते हैं राम राज्य। उस राम राज्य की ओर मोदी और योगी हैं। हमने भगवान राम को नहीं देखा, राम के रूप में मोदी और लक्ष्मण के रूप में योगी, हनुमान के रूप में ये देश के 130 करोड़ देवतुल्य जनता अपने राम का 2019 में राज्यभिषेक करेगी और राम दोबारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा भारत की जनता बोल संकल्प ले चुकी।
उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है, इसलिए चुनावी मुहिम अब तक शुरू नहीं हो सकी है। अधिकतर मतदाता उम्मीदवारों की पहले बातें सुनना चाहते हैं और उसके बाद ही वो ये फैसला करेंगे कि उनका वोट किसे मिले। जैसा कि बागपत के दो दलित बुजुर्गों ने हमें बताया,
बहुत तो समय बताओगे जी उस वक्त पे किसे वोट डालनी है किसे नहीं, अभी तो टाइम आ तो अभी तो विचार होंगे आवेंगे घूमेंगे पार्टी वाले।
आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी मुहिम छिड़ेगी, बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का होगा। पिछले कई चुनावों पर नजर रखने वालों का कहना है कि फायदा शायद उसे हो जो मतदान के दिन अधिक से अधिक वोटरों को बूथ तक ले जाने में कामयाब हो। जुबैर अहमद, BBC मेरठ।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल IPL 12 में खेले गए एकमात्र मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में किंग्स 11 पंजाब को 28 रन से हराया। पंजाब के सामने जीत के लिए 219 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, जिसके तलाश में वो निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 190 रन बना सकी। पंजाब के क्रिस गेल कल केवल 20 रन बना सके। हालांकि मयंक अग्रवाल ने 58 और डेविड मिलर ने नाबाद 59 रनों की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारियां जीत नहीं दिला सकी। कोलकाता के आंद्रे रसेल ने 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा के 63, रोबिन उथप्पा के नाबाद 67 और आंद्रे रसेल के 48 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन बनाए। दरअसल इस मैच में पंजाब को उसकी एक भूल भारी पड़ी, जब आंद्रे रसेल पारी के 17वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन वो नो बॉल साबित हुई क्योंकि तब सर्कल में 4 की जगह 3 फील्डर खड़े थे। रसेल तब केवल 3 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद रसेल के बल्ले से निकले 5 छक्के और 3 चौकों ने कोलकाता की किस्मत के सितारे बदल दिए। आज IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने कल अबुधाबी में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 80 रन से करारी मात दी। पाकिस्तान की टीम जीत के लिए 267 रनों के जवाब में 44.4 ओवर में महज 186 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के इमाद वसीम ने 43 और सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक ने 46 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान आरोन फिंच के 90 और ग्लेन मैक्सवेल के 71 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 266 रन बनाए थे। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। वहीं सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत ने कनाडा को 7-3 से हराया। एक समय तो भारत ने 4-0 की बढ़त बनाई हुई थी। भारत के मनदीप सिंह ने हैट्रिक जमाई तो वरुण कुमार, अमित रोही दास, विवेक प्रसाद और नीलकंठ शर्मा ने एक एक गोल किया। अन्य मुकाबलों में जापान ने पोलैंड को 3-0 से हराया, जबकि मेजबान मलेशिया दक्षिण कोरिया के हाथों 2-1 से हार गया।
कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
BBC समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों से वादा किया है कि अगर वे यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट के अलग होने की डील का समर्थन करते हैं तो वे अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो वेनेजुएला से अपने सैनिकों को वापस बुला लें। शनिवार को रूस के 2 वायुसेना के विमान करीब 100 रूसी सैनिकों को लेकर राजधानी काराकाश से उतरे थे। बुरुंडी में राष्ट्रपति पियरे नकुरुनिंजा की तस्वीर से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई 3 लड़कियों को रिहा कर दिया गया है। लड़कियों की रिहाई के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया गया था। मोजाम्बिक में हैजा के 5 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। इदई तूफान की वजह से दक्षिण अफ्रीका में स्थिति बेहद खराब हो चली है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।